नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी इसके फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया टीम्स पर ये हमारी विशेष पेशकश है। नाम है इसका बी द चेंज सीरीज। पिछले लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से दोस्तों हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये जो बदलाव का दौर है, इसमें अपने आप को बदलने की भी बहुत जरूरत है। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कॉरपोरेट जगत में जो वर्क फोर्सेस के साथ चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में रतन टाटा जी ने बहुत ही सुंदर पत्र के जरिए अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। हम समझते हैं कि ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं और इन टाइम्स के साथ अपने आप को ढालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने एम्प्लॉयर्स के साथ साथ एम्प्लॉयज को इस बात की नसीहत दी है कि इस समय में थोड़ी पेशेंस रखने की आवश्यकता है, और इस पेशेंस को बढ़ाने के बारे में जब लोगों से बातचीत की जाती है तो अक्सर लोग पूछते हैं कि पेशेंस को कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर मजाक में ये बात कही भी जाती है, गॉड प्लीज गिव मी पेशेंस बट हरी अप। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। ऐसे समय में अध्यात्म हमें मदद की राह देता है, हमें संबल देता है, हमें पेशेंस और धीरज देने के लिए अध्यात्म बहुत बड़ा मददगार बनता है। पिछले कुछ दिनों से ब्रह्मा कुमारी इसके वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने यही सहयोग हमें दे रहे हैं। अगर इस बदलाव के दौर में हमें कोई चीज में सपोर्ट की जरूरत है, वो इमोशनल सपोर्ट है या स्पिरिचुअल विजडम है या गाइडेंस है, वो हमें ऑफर कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके वरिष्ठ राजयोगी हमारे साथ मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में हर दिन जुड़ते हैं और हमारी बातें सुनते हैं, और हमें जो गाइडेंस चाहिए, हमारे जब समस्याएं हैं तो उनके लिए समाधान देने की भी वो कोशिश करते हैं। आइए आज भी इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी जी हैं, जो चीफ जोनल कोऑर्डिनेटर हैं इंदौर जोन के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों की। पिछले अनेकों दशकों से उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवा में अपने तन मन धन को लगाया है और अपने जीवन को समर्पित किया है। हजारों लोगों ने उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव पाया है। आइए उनका स्वागत करते हैं। हेमलता दीदी जी, स्वागत है आपका।
स्वागत है, ओम शांति।
दीदी, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इन प्रोग्राम्स को देखते हैं और अपने सवाल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कुछ दोस्त। मैं उन सभी दोस्तों के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अभी के अभी अपने सवाल टाइप कर सकते हैं, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, और आपके क्वेश्चंस को हम स्क्रीन पे दिखाएंगे और दीदी जी के सामने उसके उत्तर लेने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल नहीं है, अगर आप सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कोई ख्याल है जो आप लिखना चाहते हैं, तो आप लिखकर शेयर कर सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे थोड़ी देर बाद। तो मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। आज हमारे दोस्त प्रश्न पूछे, उससे पहले कुछ दोस्तों ने कल हमें कुछ सवाल पूछे थे जिनका जवाब हम नहीं ले पाए थे, उनसे मैं आज की बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूं। दीदी जी, एक जो बात आज मैं शुरुआत में कह रहा था वो पेशेंस की बात है। लोग ये कह रहे थे कि अब पेशेंस लाने का समय है, ये समय हमें दिखा रहा है, मगर ऐसे ही समय में जब चैलेंजेस होते हैं, जब ऐसी मुश्किल की घड़ियां होते हैं, तो हम अपना आपा खो देते हैं, हमें धीरज धरना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। ऐसे में आप क्या एडवाइस करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की धारणा से या अध्यात्म के कुछ प्रिंसिपल्स से कि हम अपने अंदर धीरज ले आ सकें, अपने अंदर पेशेंस को बिल्ड कर सकें?
बहुत अच्छी सवाल आपने इस समय पूछा है। समय अनुसार बिल्कुल उचित है, क्योंकि आम तौर पर व्यक्ति को छोटी छोटी सी बातों में बहुत ही जल्दी इरिटेशन आ जाता है, और कोई भी व्यक्ति अगर कोई नेगेटिव बात बोल दे या ऐसी कोई परिस्थिति नेगेटिव सामने आ जाए तो तुरंत ही वो उसको बिना सोचे समझे जवाब देना शुरू कर देते हैं, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जब कोई बिना सोचे समझे उसका भविष्य क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, अगर इस बात को बिना सोचे समझे उस परिस्थिति का या उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं तो उसकी रिजल्ट हमको अवश्य ठीक नहीं मिलेगी, बल्कि परिस्थिति और ही बिगड़ जाती है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा उस परिस्थिति को हम क्षण भर रुक करके ऑब्जर्व करें, उस परिस्थिति को परखें और समझ कर परख कर उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर उस समय हमको क्या निर्णय करना जरूरी है उसके लिए थोड़ा सा धीरज मन में रखना आवश्यक है। और धीरज अगर मन में होगा तो हमारा मन शांत होगा और जब मन शांत होगा तब ही हम इन सब बातों को सोच सकेंगे और सोच करके सही निर्णय लेकर सही कदम उठा सकेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हड़बड़ी में जल्दीबाजी में कुछ का कुछ निर्णय लेते जाते, पहला निर्णय ही अगर गलत हो गया तो आगे फिर सारी खेल की बातें बिगड़ती जाती है और फिर निर्णय गलत ही गलत होते जाने से परिस्थिति बिगड़ती जाती है। इसलिए अगर हम देखें तो किसी भी बात में थोड़ा सा धीरज रखना जरूरी है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। एक बार एक कंपनी में मैनेजर थे, वो उनको बहुत गुस्सा आता था छोटी छोटी सी बातों में। एक बार उनके असिस्टेंट मैनेजर ने कोई काम करके फाइल उनके टेबल पर रखी, पर उन्होंने ठीक से उसको देखा नहीं पूरा। और जब वो सामने आए तो उन्होंने उसको देखा और कहा, काम तो पूरा हुआ नहीं है, ये कैसा काम करते हो करके गुस्से में फाइल को उनके सामने पटक दिया। और उस समय उनको पता था कि सर को गुस्सा बहुत आता है, पर उस व्यक्ति को भी गुस्सा बहुत आता था जो उनका असिस्टेंट मैनेजर था। परंतु उस समय उसने उसको ले ली फाइल शांति से और अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए। और सीट पर जाकर के बैठने के बाद वो इंतजार करते रहे कि बॉस का मूड कब चेंज होता है, वो कब जॉली मूड में आते हैं। तो जब उसने देखा जॉली मूड में आए, लेकिन इस बीच क्या हुआ कि उनके बॉस ने वो फाइल खोल के देखी। ठीक से जब देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति ने काम तो पूरा किया था, मैंने बिना वजह ही इस पर इतना गुस्सा किया, इसको इतना अपमानित किया, मैंने फाइल उठा के फेंक दी। तो उनको बड़ा अंदर गिल्टी हुई। बल्कि उन्होंने ही जब मूड ठीक हुआ तो उन व्यक्ति को बुलाया और बुला करके उनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि आपको भी इतना गुस्सा आता है और जबकि आपकी गलती नहीं थी, और बिना गलती के भी मैंने आपके ऊपर इतना गुस्सा किया और आपको इतना अपमानित किया, फाइल उठा के फेंक दी, पर आपको इतना गुस्सा आता था, अब आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? तो उसने बड़े नम्रत होकर के उनको जवाब दिया कि सर, इस बीच मैं थोड़ा ओम शांति को यूज कर रहा हूँ। तो कहा, ओम शांति क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे जाता हूँ अपना मेडिटेशन सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी के पास, वहां पर मैंने अपनी इस कमजोरी के ऊपर बहनों से पूछा था कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं धीरज कैसे रखूं। तो उन्होंने कहा कि वहां की बहन जी ने हमको ये राय दी थी कि जब आपको बहुत गुस्सा आए तो आप अपने आप को 3 बार ये शब्द याद दिलाना, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, और इसके अर्थ स्वरूप में टिक जाना। इसका अर्थ है कि ओम माना मैं आत्मा और शांति माना शांति स्वरूप हूँ। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, मेरा पिता परमात्मा भी शांति का सागर है। तो शांति तो मेरा अपना गुण है, शांति मुझ आत्मा के गले का हार है, मुझे शांत स्वरूप होना है। तो उस टेक्निक को मैंने यूज किया और जब मैंने ये बहुत समय से मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ, और इसलिए उस अभ्यास के कारण उस समय जब आपने मेरे पे गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा नहीं आया, मैंने अपने को शांत स्वरूप स्थिति में टिका लिया। तो ऐसे ही आप सब भी जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए तो अपने आप को पहले ओम शांति 3 बार स्मृति दिलाएं और उससे अपने मन को शांत करें, फिर उस परिस्थिति के बारे में सोचे और फिर उस अनुसार निर्णय करे। किसी व्यक्ति के बारे में भी जब कोई ऐसी बात है तो उसके बारे में भी पहले से सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसा है, उस अनुसार उसने ये बात कही तो किस भाव से कही होगी। तो मुझे उसके उस भाव को अपने अंदर नहीं लेना है, लेकिन उसको चेंज करके पॉजिटिव बना करके जब हम अपने अंदर स्वीकार करते हैं तो हमें फिर गुस्सा नहीं आएगा। और धीरज रख करके समझ कर फिर जब हम उसको प्यार से रिस्पांस देंगे तो बात भी बिगड़ेगी नहीं और परिस्थिति भी सुधर जाएगी। ओम शांति।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि उस परिस्थिति की वजह से बहुत बार हमारे अंदर टकराव आता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, बट अगर हम उस चीज को व्यक्ति से नहीं जोड़ के परिस्थिति से जोड़ देते हैं तो संबंध खराब नहीं होते। और उस मोमेंट के लिए अगर हमने थोड़ी सी शांति रखी है, थोड़ा सा पेशेंस रखा है, तो फिर बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है। और जैसे आपने कहा ये ओम शांति अपने आप को याद दिलाना कि मैं एक पीसफुल बीइंग हूँ, और आप बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हमारे कुछ दोस्तों ने सवाल पूछना शुरू किया है, उनके सवाल मैं स्क्रीन पर से पढ़ के आपको सुनाऊंगा। अगर दोस्तों आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं और हम दीदी जी से उसका मार्गदर्शन लेंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे साथ एक दोस्त हैं, शिल्पा मिश्रा नाम है इनका, और ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, ओम शांति दीदी, मुझे बाबा का ध्यान करे बिना बहुत बेचैनी होती है ऐसा कहते हैं, मैं समझता हूँ। वो सवाल भी पूछते हैं, व्हाट शुड आई डू। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे मेडिटेशन नए तरीके से सीख रहे हैं, और अगर वो मेडिटेशन नहीं करते, एक आध दिन मिस हो जाता है या फिर कोई ऐसा दिन होता है जिसके कारण वो नहीं कर पाते हैं, तो ये भी दिक्कत होने लगती है कि भाई हमें बेचैनी सी हो रही है कि आज हमने मेडिटेशन नहीं किया। ऐसे मेडिटेशन से जुड़ा ही एक और सवाल है जो प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक से, और वो कहते हैं एग्जैक्टली व्हाट टाइम शुड वी मेडिटेट डेली। वो पूछते हैं कि दिन में कौन से समय पर हमें बातचीत करनी चाहिए, इसके बारे में वो सवाल पूछते हैं। क्षमा करें, किस समय पर मेडिटेशन करना चाहिए वो पूछते हैं।
वास्तव में देखा जाए, मिश्रा बहन है ना, मिश्रा बहन आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। वर्तमान समय की परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें मनुष्य का मन बहुत दुखी, अशांत, बेचैन है, और जब आप परमात्मा से जुड़कर मेडिटेशन करते हैं तो उस मेडिटेशन से आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है, परमात्मा प्रेम की अनुभूति होती है, और वो आपको आज की विपरीत परिस्थिति में बहुत ही मदद करती है। और ऐसे समय पर जब कभी आप किसी परिस्थिति में उलझ जाते हैं या किसी कारण से आप अपने लिए समय नहीं दे पाते, सबके लिए समय देते हैं, अपने परिवार के लिए समय देंगे, दूसरों के लिए समय देंगे, अपने बिजनेस के लिए समय देंगे, अपने अन्य कार्यों के लिए समय देंगे, लेकिन अपने आप को अगर थोड़ा भी समय आपने नहीं दिया तो आप अपने आप को एनर्जिक फील नहीं करते हैं। और मेडिटेशन से आपको एनर्जी मिलती है, आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। इसलिए जब आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपको बाहरी परिस्थिति का इफेक्ट ज्यादा होता है, और उस इफेक्ट के कारण आप बेचैन हो जाते हैं। जैसे आप देखो, अगर बाहर बहुत गर्मी है और आप एसी चलाकर बैठे हैं तो आपको उस गर्मी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छा फील करते हैं आप एसी में बैठकर। और अगर एसी से बाहर निकल जाते हैं तो तुरंत बाहर की गर्मी का प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए जब आप मेडिटेशन करते हैं तो समझो कि उस समय अपने मन और बुद्धि को बाहर की परिस्थितियों से हटाकर एक परमात्मा में मन बुद्धि को एकाग्र करते, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उस परिस्थिति से आप अपने को अलग कर लेते हैं। और जब अलग हो जाते हैं, और परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का भंडार है, जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको वो सर्व प्राप्तियां अंदर में होने लगती है जो असल में आपको चाहिए। आत्मा की सच्ची प्यास भी वही है, आत्मा का स्वधर्म भी वही है। आप हमेशा मंदिर में जाकर क्या मांगते थे, भगवान सद्बुद्धि दो, शांति दो, आनंद दो, प्यार दो, शक्ति दो, वही तो हमारे पास नहीं था। और जब वो मेडिटेशन से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है और किसी दिन आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, इसीलिए आपको बेचैनी होती है। और बाकी तो आपने पूछा समय कौन सा अच्छा है मेडिटेशन करने के लिए, तो वैसे तो देखो शास्त्रों में भी हमारे महान विशेष आत्माओं ने भी सभी ने यही कहा है, ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त माना सुबह सुबह 4 बजे उठकर के भगवान का ध्यान करना। भक्त लोग भी 4 बजे उठकर के भक्ति करते थे, तो इसी समय पर भगवान जैसे कि हम बच्चों के लिए, हम भक्तों के लिए अपना समय निकालकर फ्री होकर के रहते हैं, तो उस समय सारी दुनिया की हलचल कुछ भी नहीं होती, सारा वातावरण शांत होता है, सारा वातावरण बहुत शुद्ध रहता है। उसको हम अमृत वेला भी कहते, जैसे कि उस समय अमृत बरसता है। इसलिए ऐसे शुद्ध समय में जब प्रकृति भी बहुत शुद्ध और शांत है, समय भी शांत है, हमारा मन भी बुद्धि भी रात्रि को आराम करके शांत हो चुका है, उस समय हमको उस परमात्मा से स्वयं का कनेक्शन जोड़ना या मेडिटेशन करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारे मन बुद्धि में दूसरी कोई बातें और है ही नहीं। और जैसे ही दिन की शुरुआत हो जाती है तो हमारे बुद्धि में दिन भर के कामों की कई बातें आ जाती है, कई परिस्थितियां सामने आ जाती है, तो मन बुद्धि को एकाग्र करना बहुत ही मुश्किल सा लगने लगता है। इसलिए यदि आप उस ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच अगर थोड़ा भी समय निकालकर 10 मिनट 15 मिनट भी करते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। ऐसे ही शाम का समय 6:30 से 7:30 का, वो भी ऐसा ही समय होता है, शाम ढलने लगती है, सारा कारोबार करके लोग घर पहुंचते, पंछी भी अपने अपने घोंसलों में चले जाते, वो भी वातावरण बहुत शांत होता है, उस समय भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको बहुत
जी, जैसे आप अभी कह रहे थे दीदी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, हमारे एक दोस्त ऑलरेडी सवाल पूछ रहे हैं, प्रीति जी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, वो पूछते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या होता है, क्या टाइमिंग होता है इसका?
ब्रह्म मुहूर्त का सही समय है रात्रि 2 बजे से 5 बजे के बीच का, ये समय बहुत ही शुद्ध समय होता है। और इस बीच आप कभी भी उठ करके मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने के लिए थोड़ा अपने मन बुद्धि को फ्रेश करने के लिए उठते ही ऐसे ही ना जाकर के बैठ जाएं, थोड़ा अपने को व्यवस्थित करें, हाथ मुंह धोएं, व्यवस्थित अपने मन को करके अगर आप चाहें तो कुछ आध्यात्मिक चीज पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा साहित्य आपके पास हो या ब्रह्मा कुमारी इसका कोई साहित्य हो कहीं का भी जो आपको मन बुद्धि को थोड़ा शांत करके या कुछ अच्छी सही दिशा निर्देश देवे, आपको परमात्मा को याद करने में सहयोग करे, ऐसी कुछ चीज पढ़कर अपने मन बुद्धि को उसमें एकाग्र करेंगे तो आपका मन और बुद्धि सहज ही एकाग्र हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने ये बात कही। और मेडिटेशन के लिए बहुत सारे लोग ये चीज पूछते हैं, क्योंकि नई नई जब चीजें हम सीखते हैं तो हमें एक आसक्ति रहती है और एक उत्कंठा भी रहती है कि हम चीजों को सही तरीके से समझें। एक और प्रश्न मेडिटेशन से जुड़ा हुआ ही है कि मेडिटेशन आंखें खोल कर करते हैं तो ध्यान नहीं टिक पाता है, तब ध्यान कैसे टिकेगा ऐसा कहते हैं। और अक्सर हमने राजयोग मेडिटेशन के बारे में सुना है कि एक ऐसी पद्धति है जहां पर लोग ओपन आइड मेडिटेशन करते हैं, खुली आंखों से मेडिटेशन करते हैं, और प्रीति जी कहते हैं कि ये खुली आंखों से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान लगता नहीं है, ध्यान टिकता नहीं है, एक जगह अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, क्या एडवाइस करना चाहेंगे इसके लिए?
हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात है प्रीति बहन, कि मेडिटेशन करते समय अगर अभी अभ्यास नहीं है, आप नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जरूर आपको आंखें खोल करके प्रैक्टिस करने में दिक्कत आएगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आपको आपके किसी संबंधी की याद आती है, वो आपके पास नहीं रहते, बहुत दूर कहीं देश विदेश में रहते हैं, और जब आपको उसकी याद आती है तो क्या आप आंखें बंद कर लेते हैं या खुली आंखों से ही उसको याद करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा आप खुली आंखों से ही याद करते हैं, और ये आंखें भले खुली हैं लेकिन इनसे आप उस समय नहीं देख रहे होते, आप अपनी मन की आंखों से या बुद्धि से उसको विजुलाइज करते हैं, मन में उसके बारे में चिंतन करते हैं, और सामने उस संबंधी को आप ऐसे देखते हैं जैसे कि वो बिल्कुल आपके सामने है, जबकि वो आपके सामने नहीं है, दूर कहीं बैठे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति को जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उस संबंधी के बारे में, तो सोचते सोचते कभी आपके मन में कोई ऐसी घटना याद आ जाती है जिस समय आपको कोई बहुत खुशी की अनुभूति हुई थी, और अभी वो घटना भी घटित नहीं हो रही और अभी वो व्यक्ति भी सामने नहीं है, लेकिन स्मृति करने मात्र से आप पुनः उस खुशी का अनुभव करने लगते हैं, वो सीन पूरा आपके आंखों के सामने आ जाता है। और तो और कभी दुख की घटना याद आ गई तो आप अपने आप को दुखी भी महसूस कर लेते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के बहुत गुण अंदर में याद आते रहते, उसने आपके लिए कोई उस संबंधी ने कितना त्याग किया, कितना आपके साथ मेहनत की, कितना प्यार करते थे, तो अगर वो बातें याद आ जाती है तो आपके स्नेह में, उसके स्नेह के कारण प्यार में आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन ये सब करते हुए आप इतना एकाग्र हो जाते हैं, आपकी आंखें कहीं किसी भी एक पॉइंट पर, चाहे दीवार पर, चाहे किसी भी चीज पर एकाग्र हो जाती है और आपका मन भी एकाग्र हो जाता। उस समय अगर कोई आपको आवाज भी दे, आपको सुनाई नहीं देता है, दो तीन आवाज देने के बाद भी सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर जब कोई आपको पास में आके हिलाता है, अरे भाई आप क्या सोच रहे हो, मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, तो आपको मैं तो फिर हम बातचीत करना शुरू कर देते। आप सोचो, आपने उस समय आंखें तो बंद नहीं की, आंखें खुली थी, लेकिन ये आंखें खुली होते हुए भी जैसे बंद थी। उस समय ये आंखें तो एक जगह स्थिर हो गई थी, लेकिन आप जो है अपने मन की आंखों से, बुद्धि की आंखों से वहां दूर तक पहुंच गए थे और उसके नजदीक अपने को फील कर रहे थे और उनकी उस अनुभूति को स्वयं में अनुभव कर रहे थे। ऐसे ही परम पिता परमात्मा भी हमारा असली संबंधी है। ये देह के संबंध तो फिर भी आप जानते हैं, शरीर भी नाशवान है और शरीर के संबंधी भी सदा हमारा साथ देने वाले नहीं, कभी न कभी हमारा साथ बीच में ही छोड़ देते, तो वो भी विनाशी है। उन विनाशी संबंधियों को हम इतना प्यार से याद कर लेते, और परमात्मा जो हमारा असली संबंधी है उसको याद करने में हमको कठिनाई होती। क्यों होती? क्योंकि हमें उसका पूरा परिचय नहीं है, हम उसको ठीक से जानते नहीं हैं। हमने उसको गायन तो किया है कि आप हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ हैं, परंतु हमने उसको अपना वो संबंधी बनाया नहीं है। इसलिए जब तक हम बहुत प्यार से और उसके साथ संबंध जोड़कर रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो इन आंखों से देखते हुए भी जब हमारी मन बुद्धि सामने उस परमात्मा को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखेगी, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपका आंखें खोल करके भी मेडिटेशन होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगे, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब सहज हो जाएगा। और दूसरी बात, आप अपने को शरीर समझ के नहीं, परंतु शरीर से न्यारी आत्मा समझ करके आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना ही मेडिटेशन है। अपने को शरीर नहीं समझना है, जैसे हम अपने संबंधी को याद करते तो शरीर समझ के याद करते, लेकिन परमात्मा के साथ जो हमारा रिलेशन है वो आत्मा का है, इसलिए उसको याद करने के लिए हमको आत्मिक स्थिति में टिककर उसके स्वरूप को सामने रखकर फिर मन बुद्धि को एकाग्र करना है। जब ऐसे
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, ये जो बात अभी आप कह रहे थे कि जब हम अपने संबंधियों को याद करते हैं तो उसके लिए तो हमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो एग्जांपल आपने प्रैक्टिकली कहा कि जब हम देखते देखते हमारा ध्यान किसी एक चीज पे टिक जाता है, हम दीवार ही देखते रहते हैं, खो जाते हैं किसी की यादों में, ऐसा होता है, तो परमात्मा की भी याद ऐसी ही है, ऐसा ही सिंपल चीज है, ऐसा आपने कहा। हमारी फ्रेंड प्रीति जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था, वो कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सवाल दीदी तक पहुंचाया और आपने जो जवाब दिया उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू प्रीति आपके अप्रिसिएशन के लिए। दीदी मैं अगले प्रश्न पर ले चलना चाहता हूं, और अगला प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो बच्चों से रिलेटेड है। यूट्यूब से हमारे साथ हीना जी जुड़े हैं, और हीना असनानी नाम है इनका, और ये पूछते हैं कि मेरा बेटा 9th क्लास में है, इधर ऑनलाइन पढ़ाई मींस ज्यादा मोबाइल लेने की वजह से उसे ज्यादा गेम पबजी इत्यादि में भी इंटरेस्ट हो गया है, उसका पढ़ाई से मन हटता जा रहा है, ऐसा हीना जी कहते हैं। और मैं सोचता हूँ ये सिर्फ हीना जी की बात नहीं है, वो आगे कहते हैं कि पढ़ाई से मन हटता जा रहा है तो मैं क्या करूं, ये पूछते हैं, और बहुत सारे मदर्स का पेरेंट्स का ये सवाल है कि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनको कुछ ना कुछ ऑनलाइन भी हो रहा है पढ़ाई के मामले में, बट ऑनलाइन एडिक्शन भी ज्यादा हो रहा है कि ज्यादा गेम्स हैं, ज्यादा ऑनलाइन चीजों के बारे में भी ध्यान जा रहा है, कैसे गाइड करना चाहेंगे?
हाँ जी हीना बहन, आपने बिल्कुल समय अनुसार उचित सवाल पूछा है। आप सब जानते हैं अभी सारे बच्चे घर में हैं और घर में ही ऑनलाइन कर रहे हैं, मैं तो भी थोड़ा बाहर गेम खेलते, दोस्तों से मिलते थे, कुछ थे, पढ़ाई थे, उनका समय निकल जाता था, लेकिन वर्तमान समय सब घर में ही समय पास कर रहे हैं और माता पिता भी घर में हैं, सब कुछ है, तो इस समय का आप लाभ ले सकते हैं। बच्चे को मोबाइल से एडिक्ट न होने देने के लिए आप उनके साथ बैठें, प्यार से बातें करें, उन्हें कोई ऐसी कहानियां सुनाएं, कोई बातें सुनाएं, जैसे आप देखते हैं कि पहले दादा दादी होते थे तो वो पोता पोती के साथ, नातन नातियों के साथ बैठ करके उन्हें बातों बातों में खेलते खेलते कहानी सुना सुना कर इतनी आदर्श की बातें सिखा देते थे, उनके जीवन में शक्ति भर देते थे। शिवाजी को जीजाबाई ने कितनी कहानी सुनाकर साहसी बना दिया, ऐसे सब ने, सभी ऐसे लोगों ने कितना ऐसे काम किया। पर आज के माता पिता पुराने समय के माता पिता जैसे नहीं बन पाते, उनको भी ये प्रयास करना चाहिए। वो तो खुद ही मोबाइल एडिक्ट है, वो खुद ही सारा दिन मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं, वो खुद का आदर्श ही बच्चों के सामने ऐसा रखते हैं, और आप कहते बच्चों को कि आप ऐसे नहीं करो, जैसे ये तो वही हो गया कि पापा घर में बैठे हैं, कोई मिलने आया और उसको कहते कि बेटा बोल दो पापा घर में नहीं है, तो आपने अगर ये सिखाया पापा घर में है और बोल दे कि पापा घर में नहीं है, तो बच्चे क्या सीखा, आपने क्या आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे ही अगर आप ही तो, क्योंकि ये हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी सिखाया जाता है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे, तो माता पिता पेरेंट्स बच्चों को कह कर के नहीं सिखाते, कही हुई बात तो वो जल्दी समझते नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसको देख कर के वो जल्दी सीख जाते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता कि ऐसे करो, इसलिए आप स्वयं भी अपने आप को मोबाइल से थोड़ा कम एडिक्ट होंगे, और टीवी आदि भी आजकल बच्चों को बहुत रहता है, वो सब चीजों में जितना आप स्वयं को कंट्रोल करेंगे, उनको भी एक टाइम फिक्स करें, उनका रूटीन बना के दें, इस समय पढ़ना है, इस समय गेम खेलना है, इतना समय पढ़ना है, उनको वो पढ़ने भी दें, गेम भी खेलने का समय दें, उनको चांस भी दें, लेकिन एक लिमिट बांध दें और उनको उस अनुसार पालना देंगे आप खुद ऐसी बातें सुनाएंगे, उनको सारे शिक्षाएं बातों बातों में, खेल खेल में पॉजिटिविटी भरेंगे, तो जरूर वो आपके दोस्त बन जाएंगे, आपका कहना मानेंगे, आपके आज्ञा अनुसार चलेंगे
जी,
और मोबाइल से एडिक्ट नहीं हो पाएंगे, आपके अनुसार चलना शुरू कर देंगे
जी। हमारे एक दोस्त हैं सुनीत छाबरा, और वो फीडबैक यही लिख रहे हैं कि यस, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो करते हैं आपके कर्मों से, आपके एक्शन से लोग ज्यादा सीखते हैं, बच्चे तो खासकर ज्यादा सीखते हैं। और जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात कही दीदी, ये जो समय है इस समय को आप साथ में बैठकर बिताना शुरू करें, बच्चों के साथ क्रिएटिव टाइम कुछ बिताएं, कुछ स्टोरीज सुनाएं, कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज करें। और वो बात जो आपने कही कि बच्चे आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, तो आज बच्चों को फ्रेंड्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं। जो दोस्त हमारे अभी अभी जुड़े हैं, जो कार्यक्रम में आए हैं, उन दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूं कि कार्यक्रम लाइव है, तो अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं दीदी जी से, या फिर आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे या यूट्यूब पे, जहां पर भी आप देख रहे हैं, वहां पर कमेंट्स टाइप कीजिए, और वहां पर से कमेंट्स हम स्क्रीन पर थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, और आपके प्रश्नों को हम दीदी जी से पूछेंगे भी। अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसे सवाल है जो प्राइवेट नेचर के हैं, जो जिसमें आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं सवालों को socialmedia@brahmakumaris.com पर, जहां से हम प्रश्न लेंगे, जहां पर हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, प्रश्न का गाइडेंस जरूर हमारे वरिष्ठ राज्यों की भाई बहनों से हम लेंगे। अगले प्रश्न की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। मणि यादव जी हैं और ये हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, और वो प्रश्न पूछते हैं, When my daughter sleeps in the afternoon and after waking up, she used to regret that why she slept and becomes more negative. मैं समझता हूँ ये मेरे भी कुछ दोस्तों के साथ ऐसा होता है। वो कहते हैं कि उनकी बेटी दोपहर को जब सोती हैं और सो के उठ जाती हैं, तो वो हमेशा रिग्रेट करती हैं कि वो क्यों सो गई दोपहर को, और फिर उसके बाद उनका सारा शाम उनकी पूरी नेगेटिव बीतती है। और जैसे मैंने कहा, ये मणि यादव मणि जी अपने डॉटर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से भी सुना है, कुछ मेरे दोस्त भी हैं जिनको मैं जानता हूँ दीदी, जो ऐसा ही सिमिलर चीज कहते हैं कि जब वो दोपहर को सो के उठते हैं तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होने लग जाते हैं, बोलते अरे हम क्यों सोए थे, ऐसा लगने लगता है। क्या गाइड करना चाहेंगे आप मणि जी के लिए?
हाँ जी मणि बहन, आपने बहुत सही जवाब प्रश्न पूछा है। कईयों को ये विचार आता है कि दोपहर को क्यों सोए, कई बार आजकल सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत हो गए हैं, और अक्सर कई लोग ये नॉलेज इधर उधर से सुनते रहते हैं कि अगर दोपहर को सोते हैं तो थोड़ा मोटे हो जाते हैं, सोना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी भी बातें कही। और अगर मन में कोई नेगेटिविटी लेकर के सोए हैं, कोई बात हो गई है और वही बात मन में लेकर के सोए हैं, तो वो नेगेटिव बात भी आपके मन में रहती है, जो आपको शाम को फिर परेशान करती है। तो कई बातों की उलझन आज के समय में व्यक्ति को है ही, और दिन भर में कोई ना कोई बातें परिस्थितियां तो सुबह से दोपहर तक जरूर आती ही होंगी, और वो सब बातें मन में लेकर उसको सोचते सोचते उससे दुखी होकर के, परेशान होकर के अगर आप सोए, तो उठते से भी आपके मन में क्या बातें आएगी, वही थॉट फिर से आना शुरू हो जाते। और अगर उठते से नेगेटिव थॉट आए तो फिर तो आपकी शाम पूरी खराब होना निश्चित ही है। इसलिए कई बातों को जो हम इधर उधर से सुनकर के अपने मन बुद्धि को खराब कर लेते हैं, या परिस्थिति अनुसार जो बात हुई उसको पास्ट करना हमको नहीं आता, बीती बीती जो हो गया अब सार सोचने से या आपसे कोई गलती हो गई उसको ही आप सोच रहे कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना था, मेरे को ऐसा नहीं करना था, क्यों मेरे से हो गया। हो सकता है आप दूसरे की नहीं अपनी ही कोई बात पर गिल्टी फील करते हो और सोच सोच कर दुखी हो जाते हो और फिर शाम को भी आप वही सोचते रहते। ऐसा सब करने के बदले आप अपने को हल्का कर ले, अगर कोई गलती हो भी गई है तो जिसके साथ की उसके पास जाकर दो घड़ी सॉरी कर ले, माफी मांग ले, या आपको किसी ने किया है दो घड़ी पहल करके उसको माफ कर दे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप सहज शाम को अपना कार्य सहज रीति से कर सकेंगे और शाम का वातावरण आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर आप वो नहीं कर पाते तो आपका मन भारी रहता है उन बातों से, गिल्टी से, और कई दूसरों की कोई बातों से भी गिल्टी होती है या मन में दुख होता है, मेरा अपमान किया, मेरे को ऐसे बोला, मेरे साथ ऐसा किया, हम तो उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, तो समय पर उनको मदद करते हैं, फिर भी देखो आज उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसी ऐसी बातें भी कही आती। तो या तो दूसरों की वजह से या अपने द्वारा ही कोई भूल हो जाने से, किसी के साथ हमने अच्छा नहीं किया उसकी वजह से, लेकिन वो अंदर में हमको ही खाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, या दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हम इन बातों को समझ लेते हैं और एक दूसरे से माफी मांगकर या एक दूसरे को माफ करके उन बातों को खत्म कर देते हैं तो हम सहज ही इजी होकर के और आगे बढ़ सकते। पर ऐसा माफी मांग लेना और माफ कर देना ये भी इतना सहज नहीं होता है, उसके लिए बहुत अंदर इतनी हमारे पास पॉजिटिविटी चाहिए, इतनी शक्ति चाहिए अंदर। अगर वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है, वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं है, तो हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते और उन बातों को भुला भी नहीं सकते। क्योंकि कोई भी बात चाहे सामने वाले ने हमारे साथ की या हमने कुछ गलत कर दिया, अगर हमको गिल्टी हो रही है तब तक वो अंदर से खत्म नहीं होती जड़ से, जब तक हम दिल से उसको क्षमा नहीं कर देते। अंदर से खत्म तभी होगी जब हम उसको माफ करेंगे और हमेशा के लिए उसको खत्म कर देंगे, उस बात को भूल जाएंगे। तो अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो उसके लिए हमको एक बात हमेशा बुद्धि में रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, एक बार हमने ऐसा कर लिया लेकिन आगे हम इसका ध्यान रखेंगे, आगे अब हमसे कोई ऐसी भूल हम होने नहीं देंगे, तो आगे फिर कभी ऐसा मौका हमको नहीं आएगा। पर हम गिल्टी करते रहते, सामने वाले के लिए सोच सोच कर दुखी होते रहते, अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाते। और परिवर्तन करने के लिए हमें यहाँ का ब्रह्मा कुमारी का आध्यात्मिक ज्ञान कि पास्ट इज पास्ट, जो सीन सामने से गुजर गई वो तो चली गई, बात तो चली गई, लेकिन हम उसको लेकर के अभी तक कूट रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अब उसको करने से कोई फायदा नहीं, हमारी समझदारी इसी में है कि जो भी हुआ उसमें जहां गलती हुई, जो एक्ट हमने की, उस एक्ट को हम साक्षी होकर के देखें, अपने ही रोल को, और देखें कि कहां मैंने गलत किया है, उसको मैं सुधार कर लूं। दूसरे को तो मैं नहीं सुधार सकती, चलो दूसरा अगर गलती कर रहा है तो भी मैं अपने आप को ऐसी परिस्थिति में कैसे ऐसे बना लूं कि उसकी उन बातों का इफेक्ट मेरे ऊपर न आए। उसके लिए संस्था में दिया जाने वाला ब्रह्मा कुमारी का जो आध्यात्मिक ज्ञान है और मेडिटेशन है वो हमको बहुत ही शक्ति देता है और पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। ये जो बात आप अभी कह रहे थे कि पास्ट इज पास्ट करना, जो बीत गया उसे याद नहीं करना, क्योंकि ये जो हमारे दोस्त अभी सवाल पूछ रहे थे, जो गिल्टी वाली फीलिंग जो आप अभी बता रहे थे, बहुत बार जो बीत चुका है उसको हम बार बार याद कर करके, वापस वहां विजिट कर करके अपने आप को परेशान करते रहते हैं, और कभी कभार हम अपने आप को कोसते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर लिया। कभी दूसरों के साथ गलती होती है तो माफी भी मांग लेते हैं, कभी अपनी गलतियों के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा चिंतन करने लगते हैं। और मैं समझता हूँ ये आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा है कि हम पास्ट को पास्ट कर दें, कि ये कहना भी सीख सकते हैं हम लोग कि अच्छा जो हो गया सो हो गया, चलो भैया वो हो गया है, ये भी कहना बहुत ही चीज हो सकती है। अगला एक प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ दीदी। ये प्रश्न सुनंदा वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक से, और वो प्रश्न पूछते हैं कि कई बार परिवार के लोग हमारे निर्णय के खिलाफ हो जाते हैं, जबकि हमें पता है कि ये उनके लिए ठीक होगा, जो निर्णय हम ले रहे हैं वो उनकी भलाई के लिए है, उनके बेनिफिट के लिए हम ले रहे हैं। ऐसे में उन्हें कैसे समझाएं कि हमारा निर्णय उनके ही भले के लिए लिया जा रहा है, हालांकि लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, कि हमारे निर्णय के खिलाफ हो जाते हैं।
इसमें सुनंदा बहन आपने सही कहा, ये घर घर की कहानी है, हर एक के घर में ऐसा होता ही है। सभी लोग एक विचारों के तो होते नहीं हैं, सबके विचार अलग अलग, सबकी सोचने का तरीका अलग अलग, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग, हर एक के अंदर हर परिस्थिति को फेस करने की शक्ति अपने अपने अनुसार होती है। अब कोई भी परिस्थिति सामने आई और उसके अनुसार उनकी समझ भी अपनी होती है, उनको जितनी चीजों की नॉलेज है, जितनी समझ है, उसी आधार पर ही वो किसी भी बात का निर्णय ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आज आपको मोबाइल ही खरीदना है, उसके बारे में आपको जितनी कंपनियों की नॉलेज है और जितना उसका पता है, उतने के हिसाब से आप उसी में से सिलेक्ट करके एक अच्छा मोबाइल खरीद लेंगे। लेकिन हो सकता है आपकी नॉलेज से भी ज्यादा अच्छा कोई और भी ऐसा मोबाइल हो सकता है। हाँ, उसमें जरूर आपका बजट भी वो देखता है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, लेकिन फिर भी नॉलेज के आधार पर निर्णय करने के लिए नॉलेज हमारे पास पूरी होना आवश्यक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है परिवार के सब लोग पूरी तरह से उस बात को समझते नहीं है और पूरी इन्फॉर्मेशन भी उनके पास, सभी के पास एक जैसी नहीं होती, उनके सोचने का तरीका अलग होता, और उस आधार पर अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार भी वो निर्णय लेते। एक व्यक्ति है, उस परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखता है, उस परिस्थिति को देखने का एटीट्यूड, दृष्टिकोण, नजरिया भी अलग का अलग अलग होता है। कोई उसको अपने स्वार्थ से जोड़कर देखेगा, तो कोई सबका भला सोच करेगा, तो कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं इसको क्यों मिलना चाहिए, ये निर्णय इसके पक्ष में जाएगा, इसका फायदा होगा, इसका फायदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के बदले में, एक दूसरे के लिए बदले की भावना, एक दूसरे की टांग खींचने की आवश्यकता जो महसूस करते, ये सब चीजें कहीं मोह के कारण हम सोचते नहीं मेरे बेटे का फायदा होना चाहिए, तो अगर ये कोई ऐसा निर्णय होगा तो मुझे फायदा होगा, तो मेरे बच्चों का फायदा होगा, उसमें बहुत सारी बातें, कई प्रकार के विकारों के वशीभूत होकर के, कहीं काम के वश, कहीं क्रोध के वश, कहीं लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत। अब कोई निर्णय किसी के पक्ष में जा रहा, आपकी उससे बहुत घृणा है, नफरत है, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो आप होने नहीं देंगे, आप उस निर्णय को पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसा परिवार में होता ही रहता है, आप सब इसको अनुभव करते होंगे, इसलिए आपको विरोध में दूसरे लोग खड़े होंगे ही, लेकिन आपको ये करना है कि उनको भी कैसे समझा बुझाकर, अगर आप सचमुच में समझते हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वो उन सबके लिए सही है, तो उनको पहले ये कॉन्फिडेंस में लेकर कन्विंस करना पड़ेगा, और जब वो कन्विंस हो जाए तो वो स्वतः ही आपके निर्णय को मानेंगे, और ऐसा हर बार होता रहेगा तो धीरे धीरे आपके निर्णय पर उनका विश्वास बैठ जाएगा कि ये जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा अच्छा निर्णय लेते हैं, सबके फायदे वाला होता है। तो आपके निर्णय को धीरे धीरे विरोध करने के बदले सब आपके निर्णय से सहमत होते जाएंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, और कोई आपको विरोध करके कुछ बोले उसको भी सहना पड़ेगा, कोई आपका अपमान करे, आपको दो शब्द कहे, वो भी उस समय आपको सुनने पड़ेंगे। थोड़ा सा अगर आपने ये कर लिया और उसको सुनकर के भी आपने प्यार से उनको समझाया कि कैसे आपका फायदा है, तो समय लगेगा, मेहनत लगेगी, थोड़ी आपको धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सुनंदा बेन,
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझता हूँ सुनंदा जी आपकी बात को समझ पा रही हैं, और दूसरे दोस्तों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पहले तो पेशेंस रखना है और दूसरी बात में ध्यान से वो बात सुनना है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है, उसके ऑपोजिट व्यूज दे रहे हैं आपको, तो सुनना है। और तीसरी बात, और जब आप सुनेंगे, सुनने के बाद आप प्यार से समझाएंगे, तो संभावना है कि व्यक्ति बदल सकता है उस बात को सुनकर। अगर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं या हम अपना धीरज खो देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि ये वंडरफुल इन्फॉर्मेशन है, कि जो जानकारी आप दे रहे हैं इससे बहुत फायदा हो रहा है। कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा था कि प्रोग्राम लाइव होता है तो लोग जानना चाहते थे कि हर दिन होता है। मैं बताना चाहता हूँ हमारे दोस्तों की प्रोग्राम हर दिन लाइव होता है, और हर दिन हमारे साथ एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को कई सालों तक अप्लाई किया है, और वो मेडिटेशन के टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड कर पाते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के द्वारा। अगला एक प्रश्न है दीदी, जो स्मित भट्ट हमारे साथ पूछते हैं। स्मित यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं, वो पूछते हैं कि व्हाई आर देयर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। वो कहते हैं, स्मित का सवाल है कि अध्यात्म के मार्ग पर हम चलते हैं तो वहां पर इतने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स क्यों होते हैं, इतने ज्यादा परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है अध्यात्म के मार्ग पर, ऐसा वो कहते हैं।
ये तो सही बात है स्मित भट्ट जी, आपने देखा होगा जिन भी धर्म पिताओं ने धर्म की स्थापना की उनको भी बहुत सहना पड़ा, जिन्होंने भी हमारे महात्मा गांधी जी हुए, अन्य कई हुए, थोड़ा सा समाज से हटकर के कुछ किया तो उनको जरूर सामना करना ही पड़ता है विघ्नों का, और हरेक के जीवन में भी वैसे भी विघ्न तो आते ही रहते हैं, लेकिन कोई जब सत्य के मार्ग पर चलता है या कहें आध्यात्मिकता को जीवन में लाता है, थोड़ा धर्म कर्म के बारे में ज्यादा प्रयास करता है, तो आजकल क्योंकि भौतिकवादी बातें दुनिया में बहुत बढ़ रही है और लोग भौतिक ज्यादा होते जा रहे हैं, इसलिए उनको ये आध्यात्मिकता की बातें या धर्म कर्म की बातें ऐसी लगती है जैसे ये व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन आप जानते हैं पुराने समय में माता पिता छोटे बच्चों को भी, हमें याद है हम जब छोटे थे तो हमारे दादा दादी हमको मंत्र याद कराते थे, श्लोक याद कराते थे, रोज सुबह उठकर भगवान के आगे जाकर भगवान को पांव पड़ना है, नमस्ते करना है, आरती करना है, पूजा करना है, और उनका कैसे उनको शाम को भी आरती करना है, सब चीजें अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाया करते थे। लेकिन आजकल का वातावरण आध्यात्मिकता वाला नहीं रहा है, भौतिकता और फैशनबाजी और शोबाजी ये सब बहुत बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में अगर कोई ऐसा करता है जो दुनिया के हिसाब से उनको लगता है ये जैसे हमारे से कुछ अलग कर रहा है, ऑकवर्ड लगता है उनको, तो इसलिए वो उनके मार्ग में बाधाएं डालते, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनको करने नहीं देते। अगर वो कोई ऐसी बात अपने अंदर लाने की कोशिश करते, मानो आज तो खाओ पियो मौज करो का जमाना है, और अगर वो खाते पीते नहीं तो वो उनके हंसी, अरे क्या तुम ऐसे आध्यात्मवादी बन गए हो, ये सब करने का अभी उम्र थोड़ी है, अभी तो खाओ पियो मस्त रहो, देखा जाएगा बुढ़ापे में करना। पर आप सोचिए कोई आप लिखवा के लाए हैं धर्मराज से कि आप बुढ़ापे तक जिंदा ही रहेंगे और बुढ़ापे में आप ये सब करेंगे, आपके लिए समय कोई निश्चित नहीं है। आजकल तो हम देखते कि छोटा बच्चा 4 साल में भी मर सकता है, या कोई जवान भी जा सकता है, बूढ़ा तो कभी भी जाता ही है, लेकिन कोई भी कभी भी, आज हम यहाँ हैं, सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए कुछ कह नहीं सकते। किसका अंतिम श्वास कितने समय बाद छूटेगा किसी को नहीं पता है, लेकिन जो समय हमें मिला है, जितना हमारे पास श्वासें उपलब्ध है हमको, हम क्यों ना उसका लाभ उठाएं और जितना हो सकता है वो सब कार्यभार भी हम करें जो हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है। परिवार को संभाले, परिवार के लिए कमाई करें, हर बात का ध्यान रखें, अपने बच्चों का, परिवार का, उनकी पढ़ाई का, उनको अच्छा चरित्रवान बनाने का, सब बातों का ध्यान रखें, लेकिन अपने लिए भी समय तो देना ही चाहिए। पर जब हम देखते हैं कि उनको ये बातें, हमारे परिवार को या समाज को अपने लिए समय देना और थोड़ा सा समाज से हट करके आध्यात्म की तरफ जाना, लोग उसको पसंद नहीं करते और सोचते कि शायद ऐसा करने से ये सन्यासी बन जाएंगे, घर बार छोड़ करके कहीं चले जाएंगे। पर ये भ्रम है, ये लोग सुनी सुनाई बातों से ऐसी बातें मन में डाल देते हैं। कोई भी संस्था, आध्यात्मिक संस्था, किसी को भी ये शिक्षा कभी नहीं देती कि घर बार को छोड़ो। बल्कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो ज्ञान सुनने आने वाले परिवार के परिवार, बाल बच्चों सहित, बेटा बहू सहित, सास बहू, बेटा बहू, सास ससुर, बेटा बहू, पोता पोती, सब एक साथ बैठ करके ज्ञान सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे सोचने का तरीका है। आप लोगों की सुनी सुनाई बातों से हम अपने मन को ऐसा बना लेते, और जब ऐसा कोई सुन लेते, अरे तुम्हारी पत्नी वहां जाने लगी, देखो सब छोड़ देगी, तुम्हारा काम धंधा नहीं करेगी, घर को नहीं संभालेगी। कोई स्त्री को पति के लिए कह देते, अरे तुम्हारी स्त्री वहां जाने लगी, पति को छोड़ देगी, ऐसी बन जाएगी, सन्यासी बन जाएगी। लेकिन ये सब बातें व्यर्थ है। हर जगह यही शिक्षा दी जाती है कि जैसे कमल कीचड़ में रहता है, अपने परिवार उसका है, कमल गट्टा, कमल पंखुड़ी, सब सबके साथ होता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर होता है, कीचड़ का एक छींटा भी उसके ऊपर नहीं होता। इसी प्रकार हमको घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए, सिर्फ अपने अंदर जो बुराई आ गई है, विकार जो आ गए हैं, जिनके कारण हम दुखी हो रहे हैं, जिनके कारण आज परिवार में तनाव, झगड़े, लड़ाई हो रहे हैं, उन बुराइयों को हमें छोड़ना है और उसकी जगह शांति, आनंद, प्रेम, सुख, शक्ति और सद्गुणों को अपने अंदर धारण करना है, निमित्त भाव लाना है, पूर्ण व्यवहार करना सीखना है, सहन करना सीखना है, समाने की शक्ति लानी है। ये सब बातें हमको आध्यात्मिकता से मिलती है, जो हमारे परिवार में सुख शांति स्थापित करने में हमको बहुत मदद करती है। पर लोगों को ठीक से इसकी समझ नहीं होने के कारण वो इसको दूसरे अर्थ में ले लेते और उसमें, उसके मार्ग में विघ्न डालते। इसीलिए आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने वालों की राह में विघ्न पड़ते हैं। तो आज से आप सब सुन रहे होंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपके अंदर भ्रांति है वो आप निकाल दीजिए, बल्कि परिवार सहित जाइए आश्रम में और ज्ञान सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, आपका परिवार एक सुखी और शांत परिवार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, बहुत ही अच्छा परिवार बन जाएगा। तो अवश्य आप ऐसा करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, जो आप ये अभी जवाब बता रहे थे। मैं समझता हूँ बहुत सारे दोस्तों के मन में आध्यात्मिकता के प्रति ये धारणा बनती है, और आपने ये भी कहा कि हाँ, जब समाज के लोग इन चीजों को अलग परिपेक्ष में देखते हैं, एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो तब बहुत ज्यादा ऑपोजिशन भी बहुतों को फेस करना पड़ता है, और आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स दिए कि बहुत सारे महान व्यक्तित्वों के मार्ग पर ये कठिनाइयां आती हैं, और क्योंकि ये परिवर्तन का मार्ग है, यहाँ पर आपको खुद कुछ करना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने अंदर। और आपने ये भी कहा कि ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद करने वाली चीज है, ऐसा नहीं है, आपको
कभी
अभी
कभी
करेंगे कि पूरे।
जी नीति भाई, कभी कभी देखा जाता है घर के लोग बहुत परेशान है, इतना शराब पीते हैं, शराब छोड़ते नहीं है, सारा पैसा बर्बाद कर रहे, और अगर वही व्यक्ति किसी आध्यात्मिक संस्था में जाकर के शराब पीना छोड़ देता है तो वो इस बात से परेशान हो जाते कि वहां जाके क्यों छोड़ा, उसको उल्टा ही होता है। लेकिन अच्छा है ना, अगर कोई बात में परिवर्तन आया तो वो उसको सुखद रीति से नहीं लेते, क्योंकि लोगों की भ्रांतियां मन में होती है।
जी नहीं, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी। मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे दोस्त इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी सभी के लिए है, ये उम्र का तकाजा नहीं है, इसमें आप हर कोई इसे अप्लाई कर सकते हैं, और जितने कम उम्र में आप इन चीजों को सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को सीखते हैं, वो आपके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के लिए वो हेल्प करता है, और आपके अंदर पेशेंस आता है, शांति आती है, प्रॉब्लम्स को डील करने की एबिलिटी आती है, टॉलरेंस का पावर आता है, बहुत सारे बेनिफिट्स दीदी ने गिनाए, और लोग हर चीज के लिए कहते रहेंगे ये चीजें आती हैं, बट आध्यात्म इन सभी चीजों को डील करने के लिए आपको शक्तिशाली भी बनाता है और आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आता है। मैं समझता हूँ आज बहुत सारे प्रश्नों को आज हमने उत्तर लिया, और हमारे पास समय नहीं है और प्रश्नों को लेने के लिए, मेरे पास 4 मिनट हैं, और इन 4 मिनटों को मैं मेडिटेशन के लिए यूज करना चाहता हूँ। बट आज जिन दोस्तों ने हमसे सवाल पूछे, आपने अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर की दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी की तरफ से मैं दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि दीदी हमारे साथ जुड़े खास इंदौर से, और आप सभी के साथ रूबरू हुए और आपके सवालों का जवाब दिया, मार्गदर्शन दिया, और बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर्स दिए जो हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अभी हम सभी मेडिटेशन करेंगे, तो आप सभी अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, और जैसे आपको शुरू में बताया था, ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो अपने आप को मस्तक के बीच चमकती हुई मणि, ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप आत्मा के रूप में देखें। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हूं, शुद्ध पवित्र हूं, मैं आत्मा अपने आप को इस देह में रहते हुए देह से अलग ज्योति स्वरूप में अनुभव कर रही हूं। अब मैं आत्मा अपने आप को मन बुद्धि के द्वारा आत्मा के सच्चे संबंधी माता पिता बंधु सखा स्वामी साजन गुरु शिक्षक बच्चा, ऐसे सर्व संबंधी, ज्योति बिंदु स्वरूप, परम पिता परमात्मा के पास मन और बुद्धि के द्वारा अपने आप को देह से अलग करके ले चल रही हूं। मैं अपने सामने ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा के इस स्वरूप को बुद्धि द्वारा विजुलाइज कर रही हूं। मेरी मन की आंखों से मैं उसको स्पष्ट देख पा रही हूं। ओ मेरे माता पिता, आपने मुझे पहचान लिया, मैंने आपको पहचान लिया, अब मैं आपकी सच्ची संतान बन गई हूं। आप मेरे माता पिता हैं, आप तो शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। आपसे निकलने वाली शक्तिशाली सफेद किरणें मुझ आत्मा तक पहुंच रही हैं, मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं, और मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप रही। मेरे पिता, परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं, उनसे शक्तियों की लाल रंग की किरणें, शक्तिशाली किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। उन शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा अपने में समाकर शक्तिशाली बनती जा रही हूं। मुझ आत्मा में विपरीत परिस्थिति में धीरज रखने की, सहन करने की शक्ति आती जा रही है। मेरे अंदर निर्णय शक्ति और परख शक्ति भी बढ़ रही है। सर्व के प्रति सहयोग करने की, सबको दिल से क्षमा करने की, माफी मांग लेने की और माफ कर देने की शक्ति भी मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं आत्मा इन सर्व शक्तियों को धारण कर शक्तिशाली बनती जा रही हूं। मेरे अंदर प्यारे परम पिता के सारे ही गुण शांति, आनंद, प्रेम, सुख, शक्ति सारे गुणों से मैं भरपूर होती जा रही हूं। अब मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गई हूं। जैसा समय, जैसी परिस्थिति होगी, उस अनुसार मैं स्वयं को उस गुण का स्वरूप बनाकर, उस शक्ति को अपने अंदर धारण करके, उस परिस्थिति को सही रिस्पॉन्स दूंगी और हमेशा जीवन में सफलता को प्राप्त करूंगी। मुझे अनुभव होता है सर्वशक्तिवान परमात्मा का सदा ही मेरे साथ, साथ का अनुभव है, वो सदा ही मेरे साथ होते हैं। जब भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। मैं सदा अपने सच्चे संबंधी, सच्चे मित्र, सच्चे माता पिता को अपने साथ रखकर उनकी आज्ञा अनुसार हर परिस्थिति को फेस करूंगी और जीवन में सफलता पाऊंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।